ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں، اپنی محفلیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو۔ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ۔
کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا۔
میرا نام ایڈوکیٹ اسد احسان عطاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مکروہ وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس میں کیا حکمت ہے؟
اچھا جی، مکروہ وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ پہلے تو اوقات مکروہ ہی بتا دیں کہ جن وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہ اوقات نماز کے اعتبار سے تین ہیں۔ ایک وقت تو فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہوتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو طلوع آفتاب سے تقریباً 20 منٹ کا یہ جو وقت ہے یہ مکروہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔
ٹھیک۔
اچھا، دوسرا مکروہ وقت آتا ہے کہ جب سورج عین سر پر آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کی رفتار بظاہر ایسی لگتی ہے کہ بہت سست ہو گئی۔ اب سورج جب جانب مغرب ڈھلنا شروع کرتا ہے تو یہ والا جو ٹائم ہے کہ عین سورج سر پر آ جائے، اور جب تک وہ جانب مغرب ڈھل نہ جائے تو اس کو کہتے ہیں زہوِ کبریٰ،
زوال کا وقت جسے،
جس کو عرف عام میں لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں، تو اس کا اصل نام ہے زہوِ کبریٰ۔
ٹھیک۔
تو یہ اس وقت یوں سمجھیں کہ سورج عین سر پر ہے، تو وہ دنیا کو جتنی روشنی دے سکتا ہے اس وقت بہت زیادہ روشنی دن کے وقت میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو زہوِ کبریٰ کہتے ہیں۔ تو جب سورج مائل با مغرب ہوتا ہے، جب زوال کی طرف جاتا ہے، ڈھلنا شروع کرتا ہے، تو یہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور مکروہ وقت ختم ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔
ٹھیک۔
تیسرا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب ہونے سے تقریباً کوئی 20 منٹ پہلے کا یہ وقت ہے کہ سورج جب جانب مغرب بالکل جس مقام پہ اس کو غروب ہونا ہوتا ہے اس کی طرف جب پہنچ جاتا ہے، تو اب تقریباً 20 منٹ کے دورانیہ جو رہ جاتا ہے غروب آفتاب میں، اس وقت میں بھی کسی قسم کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یعنی طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ،
ٹھیک،
غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ، اور جب سورج عین سر پر آ جائے جسے زہوِ کبریٰ کہا جاتا ہے، اور عرف عام میں لوگ زوال کا وقت جس کو کہتے ہیں، ان تین اوقات میں نماز پڑھنا چاہے فرض ہو نفل ہو جائز نہیں۔ اب اس کے ناجائز ہونے کی،
اس دن اگر اثر کی رہتی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں؟
اثر کی نماز کا ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ اثر کا جو وقت ہے وہ مغرب ہونے تک، یعنی سورج غروب ہونے تک یہ پورا ٹائم یہ اثر کا وقت کہلاتا ہے، جس میں آج کی فرض نماز اثر کی ادا کی جائے گی۔ تو اب اگر سے مکروہ وقت شروع ہو چکا ہو تو جس نے آج کی اثر نہیں پڑھی تو وہ آج کی اثر ادا کرے گا، اس پہ لازم ہے،
یعنی یہ چھوڑے گا نہیں کہ مکروہ وقت شروع،
اب مکروہ وقت ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اگر یہ نہیں پڑھتا اب بھی تو مغرب ہوتے ہی غروب آفتاب ہوتے ہی عصر کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ گناہ کی بات ہے, تو لہذا اب یہ مکروہ وقت میں ہی نماز کو ادا کر لے تاکہ قضا ہونے سے بچائے. اب یہ جو اس کی وجہ کیا ہے, ان اوقات میں کیوں عبادت سے منع کیا گیا ہے, تو سب سے بنیادی چیز ایک مسلمان کے پیش نظر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس بات کا حکم دیں گے اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. جس بات سے ہمیں منع کر دیں گے ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے. آیت کریمہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دیں, جو چیز تمہیں بیان کریں, جو چیز تمہارے لیے لے کر آئے ہیں, تو اس کو تم نے لے لینا ہے, یعنی اس کو اپنانا ہے, اختیار کرنا ہے, عمل میں لانا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں فانتہوا, اس سے رکنا ہے. اطاعت خداوندی, اطاعت رسول مسلمانوں پر لازم ہے. اب کسی بھی کام سے منع کر دیا, بچنا ہے. اب اس کی کیا حکمت ہے, تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ کام بھی حکمتوں سے بھرپور ہے.
جی,
کسی کام سے منع کر دیا وہ کام بھی حکمتوں سے بھرپور ہے. اب ہمیں اس کی حکمت لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, ہمیں اطاعت خداوندی اطاعت رسول کرنا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنے احکام, اب جس میں اوامر بھی ہیں یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے, نواہی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ احکام ہیں, ان کی حکمتیں اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے. تو یہاں جو ایک حکمت جو ان اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے سے ممانعت کی ہے وہ یہ کہ سورج کی پرستش کرنے والے, سورج کو پوجنے والے, یہ دنیا میں پہلے بھی تھے اب بھی ہیں,
بالکل
جو سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. تو جب یہ اپنے زوم فاسد میں, زوم باطل عقیدہ باطلہ میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس یہ سورج طلوع ہوا, تو طلوع ہوتے ہوئے اب یہ اپنے معبود باطل جو انہوں نے اس کو معبود سمجھا ہوا ہے اس کو ویلکم کر رہے ہیں, اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, تو اس کے آنے پر
سورج کی پوجا کریں,
سورج کی پوجا پاٹھ ہو رہی ہے, پرستش ہو رہی ہے. اچھا یہ کب تک کرتے تھے, جب تک سورج کی روشنی تیز نہ ہو جائے اور آنکھوں میں چبھنے نہ لگے, جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں کہ آنکھیں کھیرا ہونا, آنکھیں کھیرا جب تک نہ ہو یعنی آنکھوں میں سورج کی روشنی کرنیں جب چبھنے لگتی ہیں, تو اب یہ سورج کے پرستش کرنے والے اب سورج کی پوجا پاٹھ کو ختم کر دیا کرتے تھے. اسی طرح جب سورج عین سر پہ آ جاتا تھا تو اب وہ اپنے زوم میں سمجھتے تھے کہ اس وقت ہمارا جو معبود ہے بڑا جلال میں ہے, تو اب اس کی تعظیم اور اس کو خوش کرنے کے لیے پھر وہ اس ٹائم سورج کی پوجا کرتے تھے. اور جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آتا تھا تو غروب ہونے کے وقت جب سورج کو دیکھنا آسان ہوتا ہے تو اب سورج کو جاتے جاتے اس کی پھر عبادت کیا کرتے تھے. تو
یعنی ابتدا میں اور انتہا میں,
ابتدا میں انتہا میں, اس کے آنے
درمیان
پہ جانے اور اس کے درمیانی وقت جس میں سورج کی روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, خوب اجالا ہو جاتا ہے, تو ان اوقات میں وہ سورج کی پوجا کرتے تھے. تو جس وقت میں اللہ کی مخلوق سورج کی, سورج کی پوجا کرنے والے خاص ان اوقات میں عبادت کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں جس میں غیر اللہ کی عبادت بالخصوص ہوتی تھی, ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے مسلمانوں کو منع فرما دیا, تاکہ کہنے کو کوئی سورج کا پجاری یہ نہ کہے دیکھیں یہ بھی ہمارے
عبادت کرتے ہیں,
سورج کی ہمارے اس کی معبود کی عبادت. تو ایک تشابہ مشابہت سے بھی گویا مسلمانوں کو بچایا گیا ہے.
اچھا یہ تو ایک حکمت ہے, یعنی بعض حکمتیں کچھ بیان بھی کی گئیں احکامات میں, لیکن سب سے بیسک بات تو وہی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہمیں حکمتوں کے تحت نہیں کہا گیا کہ ہم ہر مسئلے کی حکمت بھی جانیں, उसकी मार्फत तक भी पहुंचे और उस वजह से अमल करे।
हाँ, इस वजह से मुसलमान अमल नहीं करेगा कि ये हिकमत समझ में आ रही है,
हाँ,
तो बिल्कुल करेंगे, नहीं समझ में आ रही तो नहीं करेंगे। तो मुसलमान की शान ही यही है कि ये हुक्म रब्बी पर अपने सर को झुका लेता है, हिकमत समझ में आएगी तो माना, तो फिर ये तो नफ्स की मानने वाली बात है।
नफ्स की मानने वाली।
अब इस तरह आप यूँ समझ लें, बहुत सारी मिसालें हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि एक बच्चा है छोटा, माँ सब्जी काट रही है। उमूमी तौर पे छोटे बच्चे जो साल सवा साल डेढ़ साल के होते हैं, इन्हें छुरी के कट होने से क्या नुकसान होगा ये नहीं पता।
सही,
ये छुरी को हाथ में लेके भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे मौके पे बच्चे को नहीं पता कि छुरी से मेरी माँ मुझे क्यों बचाती है, ये अभी इसकी समझ में आएगा भी नहीं, भले इसको जितना ही समझा दिया जाए। इस वक्त जो काम है करने का वो ये कि वालदेन अपने इस बच्चे को छुरी से दूर रखें, छुरी इसके सामने से हटा लें। बच्चे को बड़े होने के बाद ये हिकमत समझ में आ जाएगी कि मेरी इस ख्वाहिश को माँ ने क्यों पूरा नहीं किया जब मैं छुरी मांग रहा था और माँ ने नहीं दिया। मैं माचिस की तीली माचिस का डब्बा मांग रहा था और माँ ने नहीं दिया। मैं चूल्हे के पास जा रहा था, मुझे क्यों रोका जाता था। तो ये बहुत सारे नादानी की उम्र में बच्चे को नहीं पता, लेकिन जब वो बड़ा होता है समझदार
होगा
फिर सब चीजें समझ में आती हैं। तो इसी तरीके से हर मुसलमान पर हर हुक्म शरीयत की हिकमतें वाजे हो जाएं, उनको समझ में आने लगे, जरूरी नहीं है। हाँ, इल्म व मारफत, जो जो आदमी इल्म दीन हासिल करता रहता है, शरीयत मुतहरा की मालूमात हासिल करता है, उलामा से मरबूत रहता है, दीनी किताबों का मुस्तनद किताबों का मुताला करता रहता है, तो उसकी बरकत ये होती है कि उसको बहुत सारे अहकाम शरा की हिकमतें पता चलती हैं। और इन हिकमतों के पता चलने का मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है कि अव्वलन हिकमत पता ना भी चले तब भी वो उसने मानना था, तब भी उसने अमल करना ही था, लेकिन हिकमत मालूम होने का फ़ायदा यह होता है कि उसका इत्मीनान कल्बी हो जाता है और अब वो दिलो जान से मजीद पुख्तगी के साथ उस हुक्म शरीयत पर अमल करता है। कि एक तो अमल वैसे ही करना खुशी से था, इताअत खुदाबंदी इताअत रसूल के पेश नज़र, और दूसरा ये कि इसमें हमारे रब ने ये भी फ़वाद रखे, वो तो हमें पता नहीं थे। ये तो हमारा रब तो हम पर कितना मेहरबान है कि हमें ना समझ में आने की सूरत में भी हमें एक चीज़ का पाबंद किया, हम उस पाबंदी के मुताबिक उसको अमल में लाते रहे, जिनसे बचने का हुक्म दिया उनसे बचते रहे, तो कितनी हिफाजत हमारी हमारे रब ने फरमाई है। तो इस तरह तो और अल्लाह व रसूल पर बंदे का एतिकाद मजबूत हो जाता है।
माशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, काफ़ी डिटेल और तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू, ये हर चीज़ के पीछे इस तरह पढ़ना भी नहीं चाहिए, और अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है उसे मुकदम रखें, जहाँ शरीयत जैसा फरमा दें सुबहानअल्लाह। हाँ, जहाँ हिकमतें पता चलती हैं बाज़ूकात अमल में मजीद पुख्तगी आती है, जज्बा मजीद बढ़ता है, लेकिन वो भी अपने अपने उस पैराए में देखा जाएगा। हर हर चीज़ के ऊपर हिकमत या आवाम को पूछना भी नहीं चाहिए कि इसमें क्या हिकमत है। इसमें बाज़ूकात जो ज़ाहरी हिकमत होती है जिस चीज़ की भी बयान की गई, लेकिन अब कहें कि भाई अब आज आज के दौर में वो नहीं है, आज ऐसा नहीं है। इस तरह कई लोग बहक जाते हैं इद्दत के हवाले से, हमें कई मरतबा सवाल आते हैं कि भाई इद्दत शरीयत मुताहरा ने जो रखी है तो ख़ास एक पीरियड रखा है, और उसकी वजह से कि पता भी चल जाए और फिर बाद में इस वक्त इद्दत ख़त्म होगी, आगे निकाह के अहकामात बयान किए। आजकल सारा दौर हैं और नॉर्मल मशीनी ज़राए से पता चल जाता है कि उम्मीद से है नहीं है, तो कोई इस तरह के मसाइल ही नहीं। तो कई लोग फिर इस लॉजिक की तरफ भी चले जाते हैं, वो फिर हुक्म शरीयत को गोया के सानवी हैसियत है जैसे। तो इस तरह के भी बाद को ख्यालात फिर आते हैं और फिर वो मादल्ला उस हुक्म पर अमल ही नहीं करते कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम।
असल चीज़ तो वो है ना कि हमें अगर 100 हिकमतों में से एक पता चली है, 99 पोशीदा हैं, और हम कहें कि फी ज़माना तो ऐसा नहीं हो रहा, या अब पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये आपकी ये मेरी खाम ख्याली है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अगर हम सहराई सफ़र करें, या इस वक्त अगर आप बाय रोड अगर कोई सफ़र कर रहा होता है तो सामने दूर एक ऐसा लग रहा होता है कि सामने रोड पे पानी बह रहा है, हमारी गाड़ी सफ़र करती चले जाती है करते चले जाते हैं, हमें वो पानी जोश मारता हुआ जो रोड पर या सहरा में दूर चमकता दमकता पानी लहरें खाता हुआ दिखाई दे रहा होता है, वो पानी नहीं होता, वो नज़र का धोखा होता है। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी 100% जिस चीज़ को समझ रहा है वो 100% वो बातें नहीं होती। तो इद्दत के हवाले से जो भी हिकमतें हैं वो अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। मुसलमान को एक हुक्म है कि अगर तलाक हुई है और औरत उम्मीद से है तो अब उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश पर ख़त्म होगी। अगर औरत उम्मीद से नहीं है, तलाक हुई है और एक औरत को माहाना अयाम रूटीन वाइज आते हैं तो अब तीन मरतबा उसके वो नापाकी के अयाम आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। एक रूल बना दिया
सब और हर तौर पे बना दिया ना, बहुत छोटी उम्र है, दरमियानी उम्र है, बहुत बूढ़ी ज़ईफ वाली उम्र है तो उसमें, यानी तलाक के एतबार।
जी जी।
बाकी इंतकाल है तो वो 4 महीने 10 दिन उसकी जो अयाम इद्दत जो एक मुद्दत है वो बयान की है, अगर उम्मीद से ना हो तो। यहाँ पर भी है बाज़ औक़ात इसमें भी लोग अपनी लॉजिक निकालने के लिए कि भाई ये तो एक आम नॉर्मल औरत के लिए एक ज़ईफ़ा हो चुकी है, बहुत ज़ईफ़ हो चुकी है तो अब उसके लिए भी क्या ये होंगे, तो इस तरह के भी सवाल। निकाह हुआ था, शोहर का इंतकाल हो गया, नहीं जी अब तो रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था, अब क्यों इद्दत है, तो इस तरह के कई चीज़ें ऐसी होती कि जो बाज़ औक़ात जिसमें हमें बस ये कि हमने मानना है वो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, और कहते हैं ना सर तस्लीम खम करना, इसी को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान तस्लीम करता है, मुसलमान जो इस्लाम वाला है वो अपने सर को झुका लेता है कि ये अल्लाह रसूल का हुक्म है, लब्बैक, मैंने इस पर अमल करना है। तो बहरहाल इन चीज़ों को हमें इसी तौर पर देखना चाहिए। मजीद बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ।
ये जब हम फसल वगैरह उठा लेते हैं, गन्ना वगैरह जो उशर की हमारी मकदार बनती है वो हम निकाल के तो अपनी बहनों को दे देते हैं, यानी उनकी दिलजोई के लिए, जबकि उनके यहाँ आमदन का कोई ना कोई माकूल जरिया होता है, क्या इस तरीके से हमारा उशर अदा हो जाएगा?
जी, फसलों की कटाई शुरू है और बिलखसूस किसान हजरात फसल के और काश्तकार और जिन्होंने जमीनों पर ये फसलें खास तौर पर उगाई हैं, गंदम की फसल इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन तैयार हो चुकी है और गंदम की बाकायदा कटाइयाँ शुरू हैं। एक मेहनत तलब काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, गर्मी भी होती है और फिर बाकायदा गंदम काटना, और कुछ तो किसान इस तौर पर राज़ी भी होते हैं कि अब सिलसिला जो है ना, पहले रमज़ान में भी आता था गंदम की कटाई के मामलात वाले, तो उसमें आजमाइश का उनको ज़्यादा सामना होता है, और अब रमज़ान के बाद ये सिलसिला शुरू हो रहा है और आइंदा ऐसा ही होगा अब कई सालों तक ये सिलसिला। तो गंदम की कटाई हो रही है इसी तरह, और जिनके भी उशर के हवाले से, तो ये जो भाई पूछ रहे हैं कि हम उशर निकालते हैं लेकिन वो दिलजोई के लिए बहनों को दे देते हैं, तो उशर अदा हो जाएगा इस तरह?
अगर बहनें मुस्तहिक हैं, उशर ज़कात की मुस्तहिक हैं, माली एतबार से उनकी जो पोजीशन है, पर्सनली बहनों की पोजीशन जिनको आप गंदम अनाज दे रहे हैं उशर का, अगर वो इतने माल की मालिक नहीं है, यानी 52.5 तोला चांदी इसकी जो कीमत है, ये रमज़ानों में तकरीबन 1.5 लाख तक इसकी अमाउंट पहुंच गई थी 52.5 तोला चांदी की। अब इस वक्त आज का रेट क्या है ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये मालूम कर लीजिए कि 52.5 तोला चांदी की मिसाल के तौर पर हम फर्ज कर लेते हैं
1,20,000 और इसके लगभग उसके पास रकम है सोना चांदी या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो ये एक अलार्म है इनके लिए।
जी जी,
जाहिर है।
तो अब अगर किसी खातून जो इनकी बहन है, अगर इनकी हमशीरा के पास, बहन के पास 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है, तकरीबन हम फर्ज कर लेते हैं 1,30,000-1,50,000 के लगभग इसकी कीमत बन रही है, अगर इतनी रकम उनके पास मौजूद है जो हाजत और जरूरियात से फारिग और जायद है, या इनकी बहन के पास हाजत से जायद, हाजत और ज़रूरियात ज़िंदगी से जायद कोई सामान है जिसकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंचती है, या कुछ रुपए हैं, कुछ ज़रूरत से जायद सामान है और इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचती है, तो इनकी बहन मुस्तहिक के ज़कात व उशर नहीं है, इनको उशर देने से, ज़कात देने से ज़कात या उशर अदा नहीं होगा। अगर इनकी बहन के पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हाजत असलिया से जायद ना रुपए पैसे हैं ना कुछ साजो सामान है, तो फिर इनकी बहन वो मुस्तहिक के ज़कात, मुस्तहिक के उशूर हैं। अगर ये बनियत ज़कात, बनियत उशूर अपना माल अपनी बहन को देते हैं और वो कब्ज़ा कर लेती हैं, तो इनका उशूर भी अदा हो जाएगा, इनकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। अब
उशर के लिए जमील साहब वही जिनको जकात दे सकते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही है
जी, जिनको जकात दी जा सकती है
उशर भी उन्हीं को दिया जाएगा,
उशर भी उन्हीं को दिया जाएगा, जिनको जकात नहीं दे सकते उनको उशर भी नहीं देंगे। उशर ये खेती बाड़ी पर जकात है, और जो जकात जो नॉर्मल हम कहते हैं वो हमारे अमवाले जकात पर लाजिम होने वाली जकात होती है, तो जैसे सोना चांदी रुपए पैसे माल तिजारत इन पे जकात का एक अलग फार्मूला है जो 2.5% की मकदार में दिया जा रहा होता है, और फिर चराई के जानवर होते हैं उनमें जकात का जो फार्मूला है वो अलग है, और फसल के अंदर जो मामला है वो ये कि अगर आसमानी बारिश से नहर से अगर ज़मीन को सैराब किया जाता है और उससे फसल तैयार होती है तो अब उस पैदावार पर उशर होगा, यानी 10%, 10वां हिस्सा पैदावार का अलग कर लिया जाएगा, बाकी 9 हिस्से 90% 90% हिस्सा ये काश्तकार मालिक वो इस्तेमाल कर सकता है।
और इसमें अखराजात भी नहीं निकाले जाएंगे,
अखराजात से पहले पैदावार का 10वां हिस्सा अलग करना पड़ेगा।
यानी अच्छा, जितनी भी गंदम उतरी, गंदम वालों की मजदूरी जो भी उसमें तय होता है, अच्छा और भी जो इस तरह के अखराजात है जो कुछ भी
जो रकम बिलफर्ज इन्होंने बीज ले उधार खरीदे
सही, उसकी भी पेमेंट देनी,
किसी से कर्जा लेके फिर बीज खरीदा, फिर जो मेहनत में 5-10 लाख रुपए खर्चा हुआ गंदम काश्त करने में, तो ये 10 लाख रुपए पहले निकाल के या इतनी मालियत का गंदम अलग करके फिर उशर होगा ऐसा नहीं है, कुल पैदावार पे पहले उशर निकाला जाएगा। अच्छा इसी तरीके से निस्फ उशर का भी लफ्ज सुनते होंगे, तो निस्फ उशर का माना है 5%, 20वां हिस्सा। तो ये 5% या 20वां हिस्सा कब होगा, जब आप अपने ट्यूबवेल के ज़रिए से अपने कुओं के ज़रिए से पानी को जानवर के ज़रिए लाद कर फिर पानी को अपनी खेती में पहुंचाते हैं, तो इस सूरत में जिसमें मेहनत पानी के हुसूल में खर्चा करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो अब जो पैदावार है इसमें निस्फे उशूर है, यानी 5%।
सही,
गोया इस सूरत में क्या होगा कि आपके 95% गंदुम आपका है, 5% आपने बतौरे उशूर जकात निकालनी होगी।
ठीक है, ये अहकामात नाज़रीन किराम ज़रूर सबको सीखने हैं समझने हैं, और बिलखसूस ऐसे अफराद जो इस फसल के मालिक हैं तो उनको बतौर ख़ास इनको सीखना भी है कहाँ अदा करनी है, तो उस तरीके से उसको अदा करें। दावत इस्लामी की भी बाकायदा पूरी एक मजलिस है, एक टीम है जो उशर के हवाले से है, और वो बाकायदा अवेयरनेस भी देती जगह जगह जाकर, उनके बयान तरबियत सेशन, मक्तुल मदीना का एक रिसाला भी है उशर के अहकाम के ऊपर, दारुल तहले सुन्नत के फतावाजात भी हैं, और हमारी दारुल तहले सुन्नत की वेबसाइट पर बाकायदा उशर के मुख्तलिफ अहकाम पर मुश्तमिल तहरीरी तौर पर फतावाजात भी मौजूद हैं, तो उनको भी आप डाउनलोड करके ऐसे अफराद को जिनकी तफहीम के लिए जिनको समझाने के लिए अगर आप भेजना चाहें तो बिल्कुल आप ज़रूर भेजिए। इसी तरह दारुल तहले सुन्नत के मुफ्तीन किराम के शॉर्ट क्लिप्स भी इस मौजू पर मौजूद हैं, तो बेसिक यही है कि जिस तरह हम रमज़ान में ज़ौक शौक के साथ बतौर ख़ास ज़कातें लोग अदा करते हैं, ज़कात का महीना रमज़ान ख़ास नहीं है लेकिन एक ओवरऑल कहें तो लोग ज़कातें रमज़ान में अदा करते हैं, तो जितनी उसमें रगबत है ना तो ये उशर भी उसी तरह ही है, यानी जकात ही है, और बल्कि उशर के अकामात तो और ज्यादा हैं। जमील साहब अगर कोई उशर वाला मकरूज है तो यहाँ उसका कर्जा माइनस भी नहीं,
कर्ज माइनस नहीं,
अच्छा वो शरीफ फकीर है कि खुद जकात ले सकता है लेकिन उशर उसको अदा
जी
करना होगा, यानी इसके अंदर तो कई चीजों में जहाँ जकात में छूट है यहाँ वो भी नहीं है, यानी उशर के अकामात एक तो माली एतबार से भी ज्यादा है कि 10वां है ये अपने उसका जकात में हम जाते तो 2.5% और इधर 10 है, तो यूं माल भी ज्यादा है और इसके अहकामात भी ज्यादा हैं, और चूंकि ये अल्लाह का खास फजल भी है कि गंदों में या जो भी है जमीन से उगाना ये बंदे की कुदरत में नहीं है, अगर जमीन नहीं उगती फसल तो ये क्या कर लेता, कई चीजें बंदा मैकेनिक खुद बना लेता है, ठीक है मशीनी जराए से बना लेता है सब कुछ है, जमीन से खुद नहीं उगा सकता, ये तो महाद अल्लाह की,
यानी तिजारत है, इन चीजों में आदमी का जो अमल है वो
हुनर नजर आ रहा होता है, ये चीजें हैं,
लेकिन जो पैदावार है तो हुक्म इलाही से उनका दाना आपने तो डाल दिया, वो जमीन गला के खत्म भी कर सकती थी लेकिन जमीन ने उसको अपने दामन में लिया, गोद में लिया, परवरिश की और उससे फिर एक फसल तैयार हुई। फिर इसी तरह पानी है, पानी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बरसात के तौर पे बंदे की ज़मीन सैराब हो जाती है, इसी तरीके से नहरों का पानी है, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बंदे पर वाफिर नेमतें हैं। तो यहाँ नेमत इलाही का जहूर बहुत ज़्यादा है बमुकाबला बंदे की मेहनत और कोशिश के, कि किसान ने तो हल चलाया, ज़मीन को हमवार किया, उसके बाद फिर अगले दफ़ा फिर उसने बीज डाल दिए, उसके बाद फिर पानी का रुख खेत की तरफ कर दिया, पानी आया, अब ये तो आराम से मजे से सो रहा है,
सब कुछ हो रहा है, नहीं
लेकिन
दिन रात
एक ग्राउंड में उस गंदम के दाने की, उस अनाज की परवरिश हो रही है।
हाँ,
तो कौन कर रहा है? मेरा रब फरमा रहा है।
और फिर फसल को मुख्तलिफ आफतों से महफूज रखा, यानी आफतें भी तो आ सकती हैं और फसल वैसी चली जाए। अच्छा है भी और माल है जिसको आदमी महफूज कर लेता है, इसको महफूज भी, इसकी हिफाजत यूं नहीं कर
इसके
सकता,
कोई गोदाम नहीं है,
गोदाम नहीं है,
इसमें कोई लॉक सिस्टम।
बहरहाल हजारा हिकमतें, नाज़रीन किराम, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र भी अदा करना चाहिए और इन नोशनों को भी अदा करें। कुछ SMS भी हैं जमील साहब, मैं चाहूँगा कुछ जवाब हम मुख्तसर शामिल कर लें। हमारे एक साहिल पूछ रहे हैं कि आपने तलाक की इद्दत का जिक्र किया है, तो क्या एक तलाक के बाद भी इद्दत होती?
तलाक एक हो या दो या तीन, इद्दत बाहर सूरत होती है, अलबत्ता एक सूरत ऐसी है कि जिसमें इद्दत नहीं होती, मिसाल के तौर पे निकाह हुआ लेकिन रुख्सती नहीं हुई और मियाँ बीवी के दरमियान बाद निकाह कभी तन्हाई भी नहीं हुई, बिल्कुल भी तन्हाई नहीं हुई, तो अब अगर किसी भी वजह से तलाक तक नौबत पहुँच जाती है तो कुरान पाक में फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, इस सूरत में तुम्हारे लिए कोई इद्दत नहीं है।
सही,
तो ये एक ख़ास सूरत है जिसमें तलाक के बाद इद्दत नहीं होती, वरना उमूमी अहवाल में कि जहाँ रुख्सती हो गई, फिर इज्दिवाजी मामला, फिर फैमिली रह रही होती है, फिर आगे चल के फिर तलाक तक नौबत पहुँचती है, अब चाहे तलाक शोहर के घर में हो, चाहे औरत और शोहर में अलीदगी हुई और नाराजगियाँ चल रही, वो मेके आई भी है, महीनों हो गए।
हाँ, लोग ये भी कहते हैं ना, अभी 4 साल से मिले नहीं है, 5 साल से मिले नहीं, अब तलाक
हो गई,
इद्दत हो गई,
इद्दत अब भी है।
ठीक है, अच्छा एक तलाक के बाद ज़ाहिर है कुछ इद्दत के अहकामात में फ़र्क होगा, जैसे तीन में या इद्दत वफात में है, अब एक तलाक है तो उसमें कई चीज़ों में तो फ़र्क है ना?
नहीं, इद्दत के अहकामात के अंदर भी फ़र्क आता है, जैसे एक तलाक है और तलाक रजई है, या एक तलाक है तलाक बाइन है, इसमें फ़र्क आ जाएगा, इद्दत के अहकाम में फ़र्क आएगा। तलाक रजई अगर एक या दो हैं तो जब तक इद्दत के अयाम ख़त्म ना हो जाएं, मर्द और औरत इन दोनों को रिश्ता इज्दिवाज दोबारा बहाल करने का ऑप्शन इख्तियार हासिल है।
ठीक,
आदमी दौरान इद्दत दो गवाहों की मौजूदगी में, दो मर्दों की मौजूदगी में, या फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में, जब सब मिलकर बैठे हैं और दोबारा रिश्ते को बहाल भी करना चाहते हैं और आदमी भी समझता है कि रिश्ता बहाल होना चाहिए, तो अब अगर जब फैमिली के अफराद मिल के बैठे हैं तो आदमी इन सब के सामने कह दे अपनी बीवी को कि मैंने तुम्हें अपने निकाह में वापस लिया।
ठीक,
ये कब है? जब एक तलाक रजी हो या दो तलाक रजी हुई हो और इद्दत के अंदर अंदर ही रुजू हो रहा हो, तो आदमी का ये कहना कि मैंने तुम्हें अपने निकाह में वापस लिया या मैंने तुमसे रजात की, तो इस तरह ये रुजू हो गया, ये दोबारा मियाँ बीवी की हैसियत इख्तियार कर गए, इद्दत का जो दौरानिया चल रहा था वो क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया, अब ये अपनी इज्दिवाजी लाइफ को आगे लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ये होगा कि एक तलाक हुई थी तो अब दो का इख्तियार बाकी है, दो हुई थी तो अब एक का इख्तियार बाकी है, तो ये फ़र्क आएगा। इसी तरह तीन तलाकों के बाद अहकाम बिल्कुल जुदा हो जाते,
जीनत के एतबार से ही फ़र्क आएगा।
अच्छा, जीनत इख्तियार करना, जेबो जेबाइश इख्तियार करना, इसका भी फ़र्क है कि अगर एक तलाक रजी है या दो तलाक रजी हैं, तो चूंकि शरीयत मुतहरा ने रुजू का इख्तियार रखा है तो ऐसे मौके पर औरत बनाओ सिंगार करे,
ठीक,
ताकि शोहर और इसके माबेन करीब रिश्ते को जोड़ने के पहलू बने, असबाब बने। जबकि अगर तलाक़ बाइन हो गई हो या तीन तलाक़ें हो गई हो या शोहर का इंतकाल हो चुका है और औरत बेवा हो गई, तो ये इद्दत वफात, इनके अंदर सोग लाजिम होता है। सोग का माना क्या है? कि बनाव सिंगार औरत नहीं करेगी, जो मेकअप है, चूड़ियां हैं, कानों में बालियां हैं, नाक में नथ है, ये इस्तेमाल नहीं करेगी, लॉकेट पहना है उसको उतारना पड़ेगा, चूड़ियाँ उतारनी पड़ेंगी। इसी तरह लिबास में भी बास लिबास ऐसे होते हैं जो शादी की तकरीबात और महाफिल इन चीज़ों इन जगहों पे पहने जाते हैं, तो ऐसे लिबास के जो खुशी का इजहार जिनसे हो रहा होता है बनाव सिंगार, वो लिबास नहीं पहनेगी, खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेगी, ये कुछ अहकामात हैं जिनका ताल्लुक सोग मनाने से है। तो शरीयत मुतहरा ने औरत पर सोग लाजिम कर दिया है इद्दत वफात में 4 माह 10 दिन, और अगर हामिला है तो बच्चे की पैदाइश तक इसकी ये इद्दत होगी वद्दत वफात में, और इस पूरे पीरियड में उसको सोग मनाना होगा। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझ में आती है कि तलाक के अंदर जो इद्दत गुजारी जाती है औरत के लिए, वहाँ एक वजह तो वो जिसका आपने जिक्र फरमाया कि औरत उम्मीद से है नहीं है, एक हिकमत वो भी है, और साथ ही साथ एक गम के
गम।
एक रिश्ता इज़दिवाज जो अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों में से एक नेमत है, जिसको अल्लाह ताला ने बतौर नेमत कुरान
बयान
पाक
फरमा
में जिक्र भी फरमाया है, ये नेमत खत्म हो गई
बिल्कुल।
तो इस के गम का औरत इजहार भी करे, तो शरीयत मुतहरा ने इस चीज को भी मद्देनजर रखा है। और भी कई हिकमतें हैं इद्दत की जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं।
कुछ और सवाल हैं, ये पूछ रहे हैं कि वुजू कायम था, वुजू था, प्याज काटा और उसी से ही हाथों में कुछ स्मेल पैदा हो जाए, तो क्या इस वजह से नमाज अदा की जा सकती है या वुजू में तो कोई फर्क नहीं पड़ा?
वुजू में तो प्याज काटने से या प्याज का अर्क
आने से
हाथ में लगने से और फिर स्मेल पैदा होने से, या लहसुन काटने से उसकी महक हाथ में आ गई है, और ये नागवार सी महक होती है, तो इनसे वुजू में तो कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह मिसाल के तौर पे अब ये हाथ में स्मेल आ रही है, तो इस स्मेल को दूर करने के जराए हैं साबुन का इस्तेमाल किया जाए, शैम्पू का इस्तेमाल कर लिया जाए, इन स्मेल को दूर करके फिर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर हाथों में बू आ रही है कच्ची प्याज की लहसुन की, और रुकू सुजूद करते हुए अपने आप को ही नागवारी का इजहार महसूस कर रहा है, तो भले ही बर्दाश्त कर रहा हो तब भी बदबू से नमाज की हालत में अपने आप को दूर रखना। अगर बदबूदार चीज़ हाथ पे लग गई है तो इसको दूर करना ज़रूरी है, ताकि नमाज में किसी किस्म की कराहत भी पैदा ना हो।
ठीक है, प्याज काटने की बात चलिए तो आम तौर पे आंखों में से कुछ पानी निकल आता है, आंसू आ जाते हैं, तो क्या आंखों में इस वजह से पानी निकल आए, आंसू निकल आए, या वैसे ही आदमी रो रहा है आंसू आते हैं, तो क्या रोने से आंसू आने से क्या ये पानी नापाक होता है या इससे वजू टूट जाता है?
आंखों से निकलने वाली रतूबत दो तरह की होती है, जिसको हम आंसू कह देते हैं। तो बाज रतूबत होती हैं जो खून या पीप ही की एक शक्ल होती है, जो पानी की ये सूरत इख्तियार कर लेती है, तो ये जो रतूबत है ये नापाक होती है। ये कब होती है? जब किसी की आंख में जख्म है, आंख दुखनी आ रही है, तो हमारे उर्फे आम में एक लफ्ज बोला जाता है आशोबे चशम,
सही।
तो जिसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं, जो आंखों का वाइट हिस्सा है उसमें नसें बहुत ज्यादा लाल हो जाती हैं, आंखों में दुखन हो रही होती है, ये जो अब आंखों से जो रतूबत इसकी वजह से निकलती है, और ये बहुत ज्यादा निकलती रहती है, आदमी साफ करता रहता है
चिपचिप वाली
तो ये
भी।
चिपचिपाहट होती है, ये पीप है, और ये आमतौर पे जैसे साफ शफाफ आंसू होता है ऐसा नहीं होता, ये हल्का सा गदला होता है, चिपचिपाहट होती है इसमें, तो ये खून कच्चा खून कहना आप इसको, तो ये खून की ही एक सूरत है जो अंदरूनी आँख के जख्म या जो इन्फेक्शन है उसका नतीजा है, और वो रतूबत का निकलना भी हमारी आँखों की सेहत याबी के लिए ज़रूरी है, तो वो निकलता रहता है, तो वो नापाक है।
सही,
उसको अब आप कह रहे हैं कि दुखती आँख का आंसू,
दुखती आंख का पानी कुछ
दुखती
भी,
आँख का पानी,
ठीक है,
तो ये नापाक है।
सही है,
अच्छा, अब इसके अलावा एक आदमी है,
रो रहा है,
बच्चे ने उसकी आंख में उंगली एकदम टच कर दिया, वो आंखों में उसकी जलन होने लगी है, ये इस सूरत में आंखों से आंसू आने लग गए, प्यास कट रही है, तो बाज़ औक़ात प्यास जहाँ कट रही होती है वो बेचारा प्यास काटने वाला भी रो रहा है, और उसके अतराफ में बैठे हुए बच्चे आदमी उनकी भी आंखों में जलन होने लगती है, वो आंसू बहाना शुरू कर देती है। ये वाला जो आंसू है, ये जो आंखों से निकलने वाला पानी है, ये नापाक नहीं है।
अच्छा, इसे वैसे ही रो रहा है, यानी
अल्लाह की मोहब्बत में रो रहा है, तिलावत करते हुए रो रहा है, दुआ मांगते हुए रो रहा है, नमाज पढ़ते हुए उसकी आंखों में से आंसू आ गए।
ये तो मुकद्दस आंसू हैं,
मुकद्दस आंसू नहीं,
ये तो मुबारक आंसू हैं, मुबारक आंसू हैं। ये तो वो आंसू हैं कि जिनकी हम देखें तो फजीलत है कि खौफ खुदा से निकलने वाला आंसू किसी मुसलमान की आंख से निकलता है तो वो आतश जहन्नम से हिजाब बन जाता है, रुकावट डाल देता है। तो जिस हिस्से पर वो आंसू खौफ खुदा वाला गिरता है उस पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाता है। तो अब सिर्फ कितने हिस्से को हराम किया जाए, बकिया को आग जलाए। तो अल्लाह की जात से उम्मीद ये है कि इस आंसू की बरकत से अल्लाह ताला पूरे जिस्म को ही जहन्नम की आग से बचा ले। तो खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहने वाले आंसू, फिक्र आखरत, अपने आमाल आमाले सिया पे जब तवज्जो गई, बद आमालियाँ, फिर आखरत, फिर अल्लाह ताला की नेमतें, फिर उस पे बंदे की नाशुक्रियाँ, जब ये सारी चीज़ें बंदे के जहन में आई और इस पे बंदा अब अपने आंसू आंखों से बहा रहा है, तो ये तो अल्लाह वालों की कैफियत है।
यानी इस पे सवाब भी मिलेगा,
इस पे सवाब भी मिलेगा,
ये दिक्कत और ये चीजें पैदा हो जाना,
सवाब का भी।
वो हदीस है जमील साहब के, फरमाया कुरान हुजन के साथ गम के साथ ना दे, तुम जब कुरान पढ़ो तो रो, और रो ना रो सको तो रोने जैसी सूरत ही बना। ये मुबारक आंसू है और आंसू से कोई वजू किसी तरह का नहीं टूटता, चाहे वो इबादत के तौर पे आंसू बह रहा हो या गमे दुनिया में ही कोई बिलफर्ज औलाद ने परेशान किया, दोस्तों ने तंग कर दिया, घर वालों ने कुछ कह दिया तो आदमी रो पड़ा, तो इस आंसू से भी वजू नहीं टूटेगा। और कोई आर्जी की वजह से पानी निकला, तिनका चले गया, हाथ किसी का लग गया, फिर पानी निकला, इससे भी कोई वजू नहीं टूटता। वजू जो खालिश टूटता है, जो चीज़ है बयान की, वो दुखती आँख जिसे अशुबे चशम कहें, जो एक मर्ज की वजह से, वो एक इन्फेक्शन की वजह से वो रतूबत और जो पानी निकलता है उससे वजू टूटता है। नॉर्मल रोने से और इन आंसुओं से कोई वजू नहीं टूटता। बाज़ुकात आदमी पूरा मसला ना सुनता है, ना समझने की कोशिश करता है, और उसको ही अपने इबहाम में और अपने जोम के मुताबिक आगे उसी पर बुनियाद रखकर जमील साहब क्या से क्या बना रहे। यानी बयान करने वाला बोले कि वो सूद हराम है, सुनने वाला कह रहा है ये दूध हराम कह दिया। भाई अपने कान ठीक रखो, बच्चों से सुनो, वो सूद हराम का है, ब्याज किसी को कह दिया, तुमने प्याज को हराम कर दिया, वो कुछ और के, सुनने वाला कुछ और के,
किसी भी बात को कट करके अपने मफाद के लिए आदमी कुरान से भी निकाल सकता है।
हाँ, इससे तो कुछ भी निकाल।
ला तक़रबुस्सलाह,
जी
नमाज के करीब ना जाओ। कोई कह रहा है मैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा, ये कुरान में ला तक़रबुस्सलाह, हाँ। आगे तो पढ़ो कि तो कब ना जाओ,
कब ना जाओ, और ये किस वजह से ये आयत मुबारका ये नाज़िल। और इस तरह की कई चीजें, किसी की भी बात को आप आधी ले लें, आधी कट कर दें, और ये सोशल मीडिया पे इस तरह के पता नहीं अजीब वगरीब ड्रामे आए रोज वो देखने को मिलते हैं। और अब तो लोग दीनी चीज़ों का भी इतना मजाक बनाने लग गए हैं। अल्लाह ताला आफियत और सलामती वाला मामला फरमाए, और हमें दीन मतीन के मामलात के अंदर कभी भी इस तरह के इस्तेहज़ा, मजाक और तहकीर वाली इन चीज़ों को, बतौर ख़ास हम बात करें तो उलमाए किराम के हवाले से, फिर दीनी मसाइल और अहकामात के हवाले से, अब तो लोग बड़ी बेबाकियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी ज़रूर अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको दीन मतीन के अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर हमारे
हादियों रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।